एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है टीना फे और उनकी किताब है बॉसी पैंट्स। मतलब टीना फे को कौन नहीं जानता, कॉमेडी राइटिंग एक्टिंग।
हाँ, SNL की पहली महिला हेड राइटर,
बिल्कुल
30 रॉक की क्रिएटर, बहुत कुछ।
बिल्कुल। पर आज हम उनकी कहानी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है, खासकर जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो काफी हद तक मेल डोमिनेटेड रही है।
सही बात है। और उनकी कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वो सिर्फ एक्टर नहीं रहीं, वो राइटर थीं, प्रोड्यूसर थीं, शो रनर थीं।
हाँ, पर्दे के पीछे भी उतना ही काम किया।
तो उनको इंडस्ट्री का जो अंदरूनी ताना बाना है, जो क्रिएटिव प्रोसेस की मुश्किलें हैं और खासकर जेंडर और पावर का जो खेल है ना, उसको बहुत करीब से देखने का, समझने का मौका मिला। एक अलग ही पर्सपेक्टिव है उनके पास।
तो आज की चर्चा इसी पर फोकस करेगी कि कैसे उन्होंने ये सब नेविगेट किया।
हाँ, कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ह्यूमर को कैसे अपनी ताकत बनाया और उनके एक्सपीरियंस से हम आज क्या सीख सकते हैं।
चलिए तो फिर शुरू करते हैं उनके सफर से। पेंसिल्वेनिया का एक आम सा शहर अपर डार्बी, वहां उनका बचपन बीता। एक चीज जिसका जिक्र आता है बार बार वो है उनके चेहरे का निशान।
हाँ, वो बचपन की चोट जिसके बारे में वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हैं।
लेकिन ये बात अहम है कि उन्होंने उसे छिपाने के बजाय उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनने दिया।
बिल्कुल, और ये शायद दिखाता है कि बहुत कम उम्र में ही उन्हें जिंदगी की अनिश्चितता का अंदाजा हो गया था, एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस आ गई थी। सोर्सेस बताते हैं कि उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया, ये समझा कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, और उनके पिता डॉन फे, उनका भी काफी असर रहा।
हाँ, उनकी वर्क एथिक और वो शांत सा ह्यूमर।
हाँ, वो डेड पैन ह्यूमर वो टीना के काम में भी दिखता है। इन सब चीजों ने मिलकर उनके उस खास तरह के ह्यूमर की नींव रखी। खुद पर हंसना, दुनिया की बेतुकी बातों पर पॉइंटेड कमेंट करना।
अच्छा, तो कॉलेज के बाद वो शिकागो गईं और वहां जुड़ी सेकंड सिटी इम्प्रोव थिएटर से। ये तो बहुत बड़ा नाम है इम्प्रोव की दुनिया में।
बहुत बड़ा, और यही उन्होंने वो सीखा, इम्प्रोव का गोल्डन रूल। हाँ, और
यस एंड
हाँ, और सुनने में सिंपल लगता है पर इसका मतलब क्या था उनके लिए? क्या है ये फंडा?
ये सिर्फ स्टेज का नियम नहीं रहा उनके लिए, ये एक तरह से लाइफ फिलॉसफी बन गया, मतलब काम करने का तरीका।
अच्छा,
कैसे?
इसका मतलब है कि आप सिचुएशन को या अपने साथी की बात को पहले स्वीकार करते हैं, हाँ, फिर आप उसमें कुछ अपना जोड़ते हैं, और ये ब्लॉक करने या नहीं कहने के बजाय मिलकर कुछ बनाने का तरीका है।
मतलब कोलैबोरेशन का एक तरीका।
हाँ, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसे आगे बढ़ाना, ये उनके पूरे करियर में दिखता है, राइटिंग में भी, प्रोडक्शन में भी।
दिलचस्प है, शिकागो के बाद फिर आया SNL का बड़ा ब्रेक राइटर के तौर पर। वो SNL का दौर तो काफी टफ माना जाता है।
बहुत बहुत डिमांडिंग, कॉम्पिटिटिव, और हाँ, जाहिर है, मर्दों का दबदबा।
और वो कुछ गिनी चुनी महिला राइटर्स में से एक थी। आसान नहीं रहा होगा, वो मेसन जार वाला किस्सा भी आता है, क्या वो सच है?
हाँ, वो किस्सा असल में उस वक्त के वर्कप्लेस कल्चर की एक झलक देता है। छोटी बात लगती है पर दिखाती है कि महिलाओं के लिए बेसिक सुविधाएं भी कैसी थीं। वॉशरूम दूर था। हाँ, और इसी माहौल में उनका हेड राइटर बनना, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
बिल्कुल, सिर्फ प्रमोशन नहीं था वो।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक जबरदस्त जिम्मेदारी थी। उन्हें लीडरशिप सीखनी पड़ी, क्रिएटिव ईगोस को मैनेज करना, अपनी बात रखना और ऐसे कल्चर में इज्जत कमाना जहां फीमेल बॉस कॉमन नहीं थी।
और ये सब उन्होंने अपनी पहचान खोए बिना किया।
यही खास बात है, अपना ह्यूमर, अपनी मौलिकता बनाए रखी। उन्होंने ये भी सीखा कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मिल जाती है।
अच्छा,
हाँ, ये वो चीज है जो आप कमाते हैं, मेहनत से, तैयारी से, एक्सपीरियंस से।
सही कहा। फिर आता है 30 रॉक का दौर। ये शो तो काफी हद तक उनके SNL के अनुभवों पर ही बेस्ड रखता था।
हाँ, काफी हद तक, और लिज लेमन का किरदार, वो तो आइकॉनिक है।
हाँ, वो थोड़ी परेशान, टैलेंटेड, खाने की शौकीन बॉस जो एक क्रेजी शो चला रही है। लगता था जैसे वो टीना फे का एक मजेदार बड़ा चढ़ा वर्जन हो।
बिल्कुल, और फिर 2008 सारा पेलिन इम्पर्सोनेशन।
ओ हाँ, वो तो कमाल था, उसने तो जैसे पूरे देश को हिला दिया था।
हाँ, उस एक एक्ट ने उन्हें एक अलग ही लीग में पहुंचा दिया। उसने दिखाया कि कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, वो पॉलिटिक्स पर, कल्चर पर कितनी पावरफुल कमेंट्री हो सकती है।
सही, तो उनकी विरासत सिर्फ हिट शोज या अवार्ड्स नहीं है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। सोर्सेज यही कहते हैं कि उन्होंने कॉमेडी का लैंडस्केप बदला, खासकर महिलाओं के लिए दरवाजे खोले। उन्होंने साबित किया कि औरतें फनी हो सकती हैं, स्मार्ट हो सकती हैं, और हाँ, बॉस भी हो सकती हैं।
और ये सब उन्होंने अपनी थोड़ी नर्डी या कहें इंटेलेक्चुअल पहचान को अपनाते हुए किया।
एग्जैक्टली, अपनी इंटेलिजेंस, अपने ह्यूमर को ताकत बनाया, उसे छुपाया नहीं। यही उनकी विरासत का कोर है, प्रामाणिकता, कड़ी मेहनत और ह्यूमर का एक हथियार की तरह इस्तेमाल।
तो अगर हम उनके मूल सिद्धांतों या वैल्यूज की बात करें, क्या चीजें थीं जो उन्हें ड्राइव करती थीं?
दो तीन चीजें बहुत साफ दिखती हैं। पहली, जैसा हमने कहा, कड़ी मेहनत और तैयारी पर जबरदस्त यकीन, टैलेंट या चार्म पर डिपेंड नहीं करना। घंटों की राइटिंग, रीराइटिंग तैयारी। दूसरा, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, इसे एक प्रोफेशनल स्ट्रेटजी की तरह देखना।
मतलब
ये कि किसी और की तरह बनने की कोशिश करना बेकार है। जो आप हैं, जो आपकी यूनिकनेस है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने अपनी नर्डी इमेज को एम्ब्रेस किया, उसे अपने काम का हिस्सा बनाया।
हाँ, ये बात तो उनके काम में दिखती है, और इसी से जुड़े कुछ और गहरे वैल्यूज भी होंगे।
बिल्कुल, कई थीम्स उभर कर आते हैं, जैसे प्रैक्टिकल फेमिनिज्म। ये किताबी नहीं बल्कि वर्कप्लेस पर जेंडर डायनेमिक्स को समझना और स्मार्टली हैंडल करना।
वो बॉसी वाले लेबल को चैलेंज करना भी इसी में आता है।
हाँ बिल्कुल, फे का कहना था कि जब महिलाएं लीड करती हैं तो उन्हें अक्सर बॉसी कहा जाता है। ये असल में पुराने पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करने का नतीजा है, न कि उनके कैरेक्टर में कोई कमी।
अच्छा, और
फिर है ह्यूमर का इस्तेमाल, सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि मुश्किलों से डील करने, कनेक्शन बनाने, स्ट्रेस में पर्सपेक्टिव रखने के लिए, एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म भी और हथियार भी। तीसरा, कोलैबोरेशन, खासकर महिलाओं के बीच। एमी पोलर के साथ उनकी जोड़ी कमाल की मिसाल है।
हाँ, वो तो है।
चौथा, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी कमियों या जिन्हें दुनिया कमी समझती है, जैसे वो निशान या बॉडी इमेज इश्यूज, उन्हें स्वीकार करना, ये कॉन्फिडेंस देता है। और आखिर में, वर्किंग मदरहुड की रियलिटी को ईमानदारी से दिखाना,
वो हैविंग इट ऑल वाला मिथक।
हाँ, उसे उन्होंने तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि ये कितना मुश्किल है, कितना कियोटिक है, लेकिन उसमें भी ह्यूमर है। ये बहुत रिलेटेबल था।
सही में, तो अगर हम उनकी लाइफ को देखें, क्या कुछ ऐसे खास मोड़ बता सकते हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, टर्निंग पॉइंट्स?
हाँ, सोचा जाए तो तीन बड़े टर्निंग पॉइंट्स नजर आते हैं। पहला, शिकागो में सेकंड सिटी ज्वाइन करना,
जहां उन्होंने हाँ और सीखा।
एग्जैक्टली, वो सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, वहां उन्हें अपना क्राफ्ट मिला, अपना समुदाय मिला, वो जगह मिली जहां वो अपनी आवाज ढूंढ सकती थी, गलतियां कर सकती थी। वो उनकी क्रिएटिव फाउंडेशन थी।
ठीक है, ये तो हुई फाउंडेशन। दूसरा बड़ा मोड़ क्या था?
दूसरा मोड़, SNL की पहली महिला हेड राइटर बनना। जैसा हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ एक टाइटल चेंज नहीं था।
हाँ, लीडरशिप रोल था।
बिल्कुल, इसने उन्हें सीधे आग में धकेल दिया। सीखना पड़ा कि पुरुष प्रधान माहौल में कैसे लीड करें, क्रिएटिव झगड़ों को कैसे सुलझाएं, अथॉरिटी कैसे इस्तेमाल करें। यहीं उन्होंने वो स्किल्स डेवलप की जो बाद में 30 Rock बनाने में काम आई। ये एक मुश्किल पर बहुत जरूरी पड़ाव था।
और तीसरा, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को पता होगा।
हाँ शायद, तीसरा मोड, 2008 का वो सारा पेलिन इम्पर्सनेशन।
हाँ,
उसने उन्हें रातों रात सिर्फ एक कॉमेडियन से कल्चरल फोर्स बना दिया। लोग उन्हें उनकी पॉलिटिकल सटायर की ताकत के लिए जानने लगे।
सही,
वो एक ऐसा मोमेंट था जहां कॉमेडी, पॉलिटिक्स और मीडिया एक साथ आ गए। इसने दिखाया कि व्यंग्य कितना असरदार हो सकता है, पर साथ ही ये भी सिखाया कि इसके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी और प्रेशर आता है। इसने उन्हें उनके इन्फ्लुएंस का असली स्केल दिखाया।
पूरी कहानी सुनकर लगता है कि इसमें आम इंसानों के लिए भी बहुत सारे सबक हैं, जैसे वो अपूर्णता वाली बात, चेहरे का निशान, उसे उन्होंने कैसे हैंडल किया, ये क्या सिखाता है हमें?
ये सिखाता है लचीलापन, रेजिलियंस, कि मुश्किलों से गुजरकर भी आप ना सिर्फ खड़े रह सकते हैं बल्कि उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बना सकते हैं। और ये प्रामाणिकता भी सिखाता है, ऑथेंटिसिटी, आप जो हैं उसे स्वीकार करना, परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं।
और वो जो रातों रात सफलता का मिथ है, उनकी कहानी तो उसे बिल्कुल तोड़ देती है। शिकागो के छोटे थिएटर से लेकर SNL तक का सफर सालों की मेहनत है।
सही कहा, ये कड़ी मेहनत के महत्व को दिखाता है। सफलता कोई जादू नहीं, ये एक लंबी मुश्किल चढ़ाई है। और एक और मानवीय पहलू जो बहुत रिलेटेबल है, वो है काम और निजी जीवन, खासकर माँ बनने के बाद का संतुलन।
हाँ, उसकी जद्दोजहद।
बिल्कुल, उन्होंने उसे ग्लोरीफाई नहीं किया। उसकी मुश्किलें, उसकी थकान, उसके मजेदार अजीब पल, सब खुलकर सामने रखें। ये बहुत ईमानदार पोर्ट्रेट था। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब अपने अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और उनमें ह्यूमर ढूंढना भी एक स्किल है, एक ताकत है।
बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो वो कौन सी तीन खास बातें हैं जो श्रोता टीना फे की कहानी से अपने साथ ले जा सकते हैं?
हाँ, तीन मुख्य टेकअवेज अगर कहें तो ये होंगे। पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। अपनी असलियत को, अपनी यूनिकनेस को, चाहे वो आपका निशान हो या आपकी नर्डी पर्सनैलिटी, उसे गले लगाना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश से बेहतर है खुद के प्रति ईमानदार रहना। आपकी यही खासियत आपको अलग और प्रभावी बनाती है। दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। वो हाँ और का सिद्धांत, ये सिर्फ कॉमेडी का नियम नहीं है, ये लाइफ का एक बहुत गहरा और प्रैक्टिकल मॉडल है। चाहे वो टीम वर्क हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना हो, ये न कहने के बजाय हाँ कहकर आगे बढ़ने का, कुछ बनाने का दर्शन है। तीसरा, एक व्यवहारिक या सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। वर्कप्लेस पर, खासकर अगर आप महिला हैं, तो जेंडर बायस का सामना करने के लिए स्मार्ट होना पड़ता है। फे की सलाह प्रैक्टिकल है। पहले देखो, क्या ये रुकावट सच में आपके और आपके गोल के बीच है? अगर नहीं तो इग्नोर करो, अपनी एनर्जी काम पर लगाओ, मेहनत से आगे बढ़ो, और जब पावर मिले तो सिस्टम को बेहतर बनाओ। बॉसी कहे जाने से डरो मत। अक्सर ये सिर्फ लीडरशिप का ही दूसरा नाम होता है, जब कमान किसी महिला के हाथ में हो।
बहुत खूब। टीना फे ने वाकई दिखाया कि ह्यूमर सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, ये सोशल कमेंट्री का, पावर स्ट्रक्चर पर सवाल उठाने का, और यहाँ तक कि बदलाव लाने का भी एक जरिया बन सकता है। ये सोचने वाली बात है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में ह्यूमर का इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं, सिर्फ टेंशन कम करने के लिए नहीं, बल्कि शायद कुछ मीनिंगफुल कहने या करने के लिए भी। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।